نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد، قال الله تعالى في القرآن المجيد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الجود والكرم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله الغالب مرة. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد، اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے اس ماہ کے شروع ہونے سے قبل ہی دو ماہ پہلے ایک دعا فرمائی تھی کہ یا اللہ، تو ہمیں رمضان تک خیر و عافیت کے ساتھ پہنچا. یہی اس دعا کا مفہوم تھا. تو بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اس دعا کا جو بہت ہی بڑا مزہ ہے، حکمت ہے، اس پہ انسان کو فکر کرنی چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا دو ماہ قبل ہی کہ بھئی رمضان تک ہمیں خیر سے پہنچا، بس ہمیں رمضان نصیب ہو جائے. تو کیا وجہ ہے اس کی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پیارے نبی نے یہ دعا فرمائی؟ تو اس کی وجہ جو بیان فرماتے ہیں وہ یہ ہے کہ اس مہینے کی اہمیت کو اجاگر فرمایا آپ نے کہ کتنا اہم ہے مہینہ جو آنے والا ہے دو مہینے کے بعد. کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے اس میں، تاکہ ہمیں احساس ہو سکے. دو ماہ قبل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعائیں فرمانا شروع کر دی. تو آپ سوچیں کہ کس قدر قیمتی لمحات ہیں جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائے ہیں، اور اس مہینے تک پہنچنے میں اللہ نے ہمیں زندگی عطا فرمائی. پہلا مقام تو اس کا شکر ہے انسان کے لیے کہ اس نعمت کا انسان شکر نہیں ادا کر سکتا کہ جو ایک رات پہلے اس رمضان سے انتقال کر گئے، کچھ روز پہلے انتقال کر گئے. دنیا کا سلسلہ تو چل رہا ہے، اس میں ہم بھی شامل ہو سکتے تھے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زندگی کے اندر ایک ایسا موقع تھا فرمایا ہمیں کہ یہ کہہ لیں کہ ایک اور رمضان ہماری زندگی میں ایڈ ہو گیا. اتنی بڑی برکت ہے. اب سوچنا یہ ہے کہ جب اتنی بڑی نعمت ہے جو اللہ نے عطا فرمائی ہے ہمیں، کہ دیکھیں بھائی اللہ کی نعمتوں کا ہم اندازہ تو نہیں کر سکتے، ہمارا پاس کوئی سٹینڈرڈ نہیں ہے کسی قسم کا. سب سے بڑی چیز جو ہے ہمارے پاس جاننا اللہ کی نعمتوں کا، وہ ایک ہی ذریعہ ہے جس کے ذریعے ہم نے جنت کو پہچانا، جنت کی چیزوں کو پہچانا، فرشتوں کو پہچانا، اللہ کی معرفت کو پہچانا، اللہ تعالیٰ کو پہچانا، وہ ایک ہی چیز ہے، اور وہ ہے زبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. ورنہ کون دیکھ سکتا ہے آدمی، کس کو پتہ چل سکتا ہے کیا نعمت ہے کیسی ہے؟ جس قدر انسان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر یقین ہوگا، اعتماد ہوگا، اسی قدر اس کی ان چیزوں کی اس کو قدر بھی ہوگی اور ڈرے گا بھی زیادہ، جس کے لیے اللہ کے نبی نے فرمایا مت کرو. تو یہ سب پتہ چل جاتا ہے کہ کس کا کتنا تعلق ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، کتنی محبت ہے، کس درجے کا عاشق ہے، کس قسم بناوٹ ہے اس میں، کتنا دور ہے. وہ سب پتہ چلتا ہے اس بات سے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس بارے میں فرمایا ہے اس پہ وہ کتنا مستعد ہے اور کتنا उसने अपने आप उसमें डाला हुआ है, पता चल जाएगा ईमान को फौरन, वो है तो सारा कुछ। हमें कोई जन्नत नजर आ रही, कोई हूर नजर आ रही, कमर के अंदर के हालात नजर आ रहे, कुछ भी नहीं। किसने बताया ये? उसी जमाने में वारिक से इरशादात हुए हैं, निकले हैं। तो जिसने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्यारे नबी की जबान पर एतमाद किया, और जिस दर्जे का एतमाद किया उसी दर्जे का उसका अमल ही बढ़ता चला गया। तो ये जांचने के लिए कि हमें नबी पर हमसे कितनी मोहब्बत है, हम कितने बड़े आशिक हैं, और जाहिर है आखिर का सारा दारोमदार ही इसी चीज़ पर है कि अल्लाह के नबी से हमारा कितना ताल्लुक है। तो एक ही चीज़ है। तो क्योंकि ये इरशाद भी अल्लाह के नबी का है, हम नहीं जानते कैसी नेमत है, वही चाँद है, वही सूरज है, वही ज़मीन है, वही सुबह है, वही शाम है, तो क्या पता हमें कि भाई ये नेमत है और कैसी नेमत है, हमें अंदाज़ा नहीं। आप से सुने एक ऐसा अमल किया कि 2 माह कबल इसके लिए दुआ की, तो बस समझ गए लोग सुभान अल्लाह कि ये जो महीना है इसमें यकीनन बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है इसकी। सुबह बस वो शुरू हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, इस महीने को पकड़ लिया हमने मजबूती के साथ। अब एक चीज़ पर सोचने की है कि जो ये महीना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बहुत ही कीमती महीना है हमारे लिए, उसकी दुआ फरमाई, आखिर ऐसी क्या चीज़ है इसमें? जो वो चीज़ है उसको तो हासिल करना पड़ेगा। है क्या चीज़ इस महीने के अंदर? हमें तो कुछ नज़र नहीं आ सकता, हमें तो पता ही नहीं है क्या चीज़ इसमें। तो क्यों इसको इतनी अहमियत दी गई इस महीने में? इसको सैयद शहूर भी कहा गया है बाज़ जगह पर कि सारे महीनों का सरदार है महीना। ऐसी क्या चीज़ है भाई इसमें? ये देखें आप, इसके अंदर एक ख़ास चीज़ जो है वो है अल्लाह की ख़ास रहमत। तो पूरे साल रहमत से ढका है, लेकिन याद रखें एक चीज़ कि जो रहमत इस महीने में है अल्लाह ताला की, वो किसी महीने के अंदर भी रहमत नहीं है। उसकी वजह से इसकी कदर है सारी। रोज़े रखते हैं या नहीं रखते हैं? नफली रखते हैं, नमाज़ें पढ़ते हैं नहीं पढ़ते? चलो हम कहते हैं जी रोज़ों की वजह से ये है, इस महीने की खासियत है, रोज़े तो रखते हैं, हर महीने में रखते हैं रोज़े, 3 रोज़े तो ऐसे भी रखते हैं, जिनको आदत होती है तो माशाल्लाह सारा साल रोज़े रखते हैं, तो वही रोज़ा भी रख रहे हैं आप। अच्छा रोज़ा भी बदलता नहीं है, ऐसी सुबह सहरी भी खाएंगे और शाम को इफ्तारी भी करेंगे। अच्छे से नहीं, और रोज़ा तो फिर रोज़ा ही होगा, उसमें जिस तरह इसमें गुनाह नहीं करेंगे उसमें गुनाह नहीं करेंगे, सारी कंडीशन तो वही है ना। तो ये तो पता चला कि रोज़े की वजह से अहमियत नहीं है इस महीने के अंदर, नमाजों की वजह से अहमियत नहीं है इस महीने के अंदर। इस महीने में जो एक चीज़ है वो क्या है? अल्लाह की रहमत है, वो भी रहमत ख़ास है, वो भी रहमत ख़ास है, याद रखें आम रहमत नहीं है वो। सिर्फ और सिर्फ जैसे ही चांद नजर आता है उस रहमत का नजूल होना शुरू हो जाता है। अल्लाह तो रहमत मुतवज्जह होती है अल्लाह की। तो अब यह है मामला, बड़ा कीमती चीज समझाया है कि महीना जो है ये बहुत कीमती है, और कीमत इसकी ये नहीं कि सिर्फ आप रोजा रख लें, कीमत इसकी ये नहीं है और अमाल कर लें, कीमत इसकी ये नहीं है आप जो कुछ कर लें, कीमत इसकी एक ही है, वो क्या? अल्लाह की रहमत ख़ास है जो इस महीने के साथ ख़ास मखसूस है। तो ये जो दुआ मांगी अल्लाह के नबी ने, तवज्जो फरमाया पूरी उम्मत को कि याद रखना इस महीने की जो कीमत है वो ये है कि अल्लाह की रहमत से है, और रहमत अल्लाह की जो इस माह के अंदर वो किसी महीने में नहीं है, तो उस रहमत को अपनी तरफ मुतवज्जा करना है इंसान, बस ये काम है हमारा। क्या काम है? अल्लाह की रहमत को अपनी तरफ मुतवज्जा करना है। सुभानअल्लाह, हर एक को नहीं मिलेगी ये, जो रहमत को मुतवज्जा करेगा अपनी तरफ, अल्लाह की रहमत उधर ही मुतवज्जा होगी, उसी तरफ जाएगी। अब ये नहीं हर आदमी कह दीजिए मेरे पर अल्लाह की रहमत इस महीने में, वो मुस्तफ़ीद होगा उससे नहीं, मुस्तफ़ीद वही होगा जो उस रहमत को मुतवज्जा करेगा, अस्तग़फ़िरुल्लाह, या उसको रिजेक्ट कर देगा, दोनों चीज़ें हैं। याद सबसे बड़ा महरूम शख्स होगा वो शख्स जो साल में इस महीने को पाले और अल्लाह की रहमत को अपनी तरफ मुतवज्जा ना कर सके, सबसे बड़ा महरूम शख्स। उससे भी ज़्यादा महरूम वो शख्स होगा कि मुतवज्जा करना क्या बल्कि रिजेक्ट कर दे, अल्लाह इस महीने की रहमत को रिजेक्ट कर दे, सबसे ज़्यादा बदतरीन इंसान वो होगा, सारा साल उसका हिरासत में गुजरेगा। फिर कि इसने इस वक्त को भी ज़ाया कर दिया कि जो ख़ास रहमत थी अल्लाह ताला की, मखसूस रहमत थी, उसको उसने मुतवज्जा नहीं किया। ना एक चीज़ बता आपको बता दूँ कि अल्लाह की रहमत यकीन बहुत बड़ी है चीज़ हमारे लिए कि इंसान की मग़फ़रत हो जाती है इस माह के अंदर, बहुत बड़ी रहमत है। अल्लाह इंसान की मग़फ़रत कर देता है, माफ़ कर देता है, गुनाह ख़त्म कर देता है और उसकी मग़फ़रत कर देता है। ले ये भी याद रखें कि ये रहमत भी हर महीने मिल सकती है आपको, हर वक्त मिल सकती है। अल्लाह की पुकार तो हर वक्त है, आप मुझसे माफ़ी मांगो मैं तुम्हें माफ़ कर देता हूँ। तो पता चला ये रहमत इस तक भी कायम नहीं है सिर्फ कि भाई हम समझें कि अल्लाह ताला हमें माफ़ कर देगा, यही रहमत हमें मिलनी है, नहीं, नहीं, नहीं। वो जो रहमत है अल्लाह की ख़ास, वो एक ऐसी चीज़ है कि जिसको आदमी यहाँ नहीं दिखेगा बल्कि वो जन्नत में महसूस होगी उसको, उसको नहीं खोला अल्लाह के नबी ने, क्या रहमत होगी। अब मुझे बताएं कि इतनी बड़ी चीज़ हमें वक्त मिली और पूरा कितने दिन मिले, 30 दिन और 30 रातें, या रिजेक्ट कर दें उसको अल्लाह माफ़ फरमाए, ये अल्लाह की रहमत को मुतवज्जा करें। अब अल्लाह की रहमत को कैसे मुतवज्जा किया जाता है और कैसे रिजेक्ट किया जाता है ये आपको मैं बता देता हूँ। अल्लाह हमें इसकी समझ नसीब फरमा दे। अगर हम चाहते हैं कि अल्लाह की रहमत को मुतवज्जा करें तो ये ऐसी नहीं है सिर्फ, ये रहमत इतनी नहीं है कि सिर्फ इतनी हो कि हम आए 5 वक्त नमाज पढ़ ली मस्जिद में आ गए, रहमत आ जाएगी। रहमत को मुतवज्जा करने का एक ज़रिया है अल्लाह की तरफ, याद रखें, एक ज़रिया है, वो ज़रिया क्या है, बंदा कोई नेक काम करे। जब भी इंसान नेक काम करेगा तो अल्लाह की रहमत फौरन उस बंदे की तरफ मुतवज्जा होती है। जब भी हम नेक काम करेंगे तो अल्लाह की रहमत हमारी तरफ मुतवज्जा होगी। तो इस माह के अंदर ख़ास वो जो रहमत है जिसका जिस वजह से अल्लाह ने महीना दिया गया, तो इस रहमत के लिए सबसे बड़ी चीज़ तो हमें यह करना चाहिए कि हमें हर वक्त किसी नेकी के अंदर मशगूल रहना चाहिए। कोई ना कोई ऐसा अमल नेकी का इंसान हर वक्त करता रहे। याद रखें कुरान की तिलावत बड़ी अजीम चीज़ है, अल्लाह अकबर, नवाफिल पढ़ना बहुत बड़ी चीज़ है, देखें तरावी भी बढ़ा दी अल्लाह ताला ने ताकि उस रहमत से महरूम ना हो, जिस कदर ज़्यादा उस रहमत को इंसान समझ ले अल्लाह जन्नत के अजीम खजाने में इंसान मैसर आ जाएंगे। तो गोया इस महीने में जो सबसे बड़ी चीज करनी है कि नेकियों को जमा करना है हमने, एक वक्त भी हमारा ऐसा ना हो कि जो नेकियों के बगैर गुजरे, हर वक्त किसी ना किसी नेकी में हमें मशगूल रहना चाहिए। फ़राइज पढ़ें, नवाफिल पढ़ें, कुरान की तिलावत करें और जनाब कुरान पढ़ें, सदकात दें, ये सब चीज़ें नेकी के जितने अमल हम इंसान करता रहे। और दूसरी चीज़ ये है कि हमें सिर्फ ऐसी नेकी नहीं, ऐसा इतना गैप भी इस महीने में नहीं चाहिए कि हमें हम नेकी से महरूम रहें। असल स्ट्रेटजी है एक लम्हा भी हमारा ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम उस नेकी में मशगूल ना हों, तो बहुत मुश्किल है। कुरान पढ़ेंगे थक जाएंगे आकर छोड़ देंगे, नमाज पढ़ेंगे थक जाएंगे छोड़ देंगे, जाहिर है तस्वीर चलाएंगे आप थोड़ी देर थक जाएंगे, लेकिन हुआ हुक्म क्या है कि एक लम्हा भी इसमें इतना समेटो कि एक लम्हा भी ऐसा ना हो कि आप नेक अमल कुछ कर ना रहा हो। तो बुजुर्गान ने बड़ी बेहतरीन बात इसमें सुनाई है, एक तरीका है उसका कि हर वक्त ہر وقت اس نیکی وہ نیکی کرتے رہیں گے اور اللہ کی رحمت اسی وقت توجہ ہوتی رہے گی آپ کی طرف. اور وہ ایک طریقہ کیا ہے؟ ذکر قلبی ہے. کیا ہے؟ ذکر قلبی. یہ اتنی مفید اور بہت زبردست چیز ہے اس مہینے کے اندر کہ جو ذاکر ہیں اللہ کا ذکر کرنے والے قلب سے, وہ ایک سیکنڈ بھی اس رحمت سے محروم نہیں ہو سکتے, بلکہ اتنا خزانہ جمع کر لیتے ہیں اللہ کی رحمت کا کہ انسان تصور بھی نہیں کر سکتا. کیونکہ دیکھیں اللہ نے کام سے منع تو نہیں کیا, ایک 30 مہینے روٹی بھی کرنی ہے, دکان بھی کرنا ہے, کاروبار بھی کرنا ہے, بچوں بھی پالنا ہے, اور جناب ہر کام ہم نے کرنا ہے, تو وہ تو ضائع ہو جاتے انسان کی. تو سب سے زیادہ جو اللہ تعالیٰ نے اس رحمت کو سمیٹنے والے وہ کون ہیں؟ وہ لوگ جو اللہ کا ذکر کس سے کرتے ہیں؟ دل کے ساتھ اللہ کا ذکر کرتے ہیں, کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرتے ہیں. تو میرے بھائیو, اللہ نے ہمیں یہ نعمت دی ہے, الحمدللہ رمضان بھی دیا ہے, رمضان کی گھڑی بھی دی ہے, اس میں سبحان اللہ سبحان اللہ, اللہ کا کرم یہ ہے کہ ہمیں قلبی ذکر کا طریقہ بھی دیا ہے. تو کسی وقت بھی چاہیے کہ ہم اللہ کے ذکر سے غافل نہ ہوں, کہ یہ سینس نہیں بنتا کتنی بڑی نعمت کو ہم چھوڑ دیں, ایک لمحہ بھی چھوڑ دیں, جبکہ پاس اس نعمت کو سمیٹنے کا ہمارے پاس ذریعہ موجود ہے. بندے کو چاہیے, عورت کو چاہیے, ہر وقت قلب کی طرف توجہ رکھ کر, ضروری نہیں ہوتا اس لیے آنکھ بند کی جائے یا کوئی ایک خاص کونے میں بیٹھا جائے, نہیں. اتنا آدمی ذکر میں محف ہو اور اتنا پریکٹس کرے پورا سال کہ اس کو محسوس ہو کہ الحمد للہ اس کی توجہ اللہ کی طرف ہے. جب بھی دو خیال جائے فوراً دل کی طرف آدمی تصور کرے اور دل کو اللہ اللہ کہنا شروع کر دے, اتنا بڑا زبردست اللہ پاک نے ہمیں طریقہ بتایا. یہ ہے ذکر قلبی کا فائدہ کہ انسان ایک لمحہ کے اندر بھی اللہ کے ذکر سے محروم نہیں ہوگا, اور ایک لمحہ بھی اگر ذکر کے اندر ہے تو اللہ کی توجہ سے محروم نہیں ہوگا, رحمت سے محروم نہیں ہوگا شخص. تو کیا رمضان ہوگا ایسے ذاکرین کا مجھے پتہ ہے, الحمدللہ کتنا بڑا مقام ہوگا. اب رحمت کو ریجیکٹ کرنا, آئے آئے, اب کتنا بڑا عذاب ہوگا جو رحمت کو ریجیکٹ آدمی کرتا ہے, مجھے بتا. وہ کیسے کرتا ہے آدمی؟ کہ جس طرح اللہ کی رحمت نیکیوں کے ساتھ متوجہ ہوتی ہے, اسی طرح اللہ کی رحمت گناہوں کے ساتھ دور ہو جاتی ہے. جس وقت بھی انسان کوئی گناہ کرے گا تو وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے گا. تو بہت زبردست کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اس ماہ کے اندر اللہ کی رحمت کو, استغفر اللہ, وہ نام ہمارا نہ لکھا جائے کہ ریجیکٹ کرنے والے ہیں. چھوٹے سے گناہ کو بھی انسان نہ کرے, یاد رکھیں, چھوٹا سا بھی گناہ اس کی زندگی میں نہیں ہونا چاہیے. اس وقت جھوٹ ہے, غیبت ہے, جلن ہے, حسد ہے, فضول باتیں ہیں, فضول وقت ضائع کرنا ہے, بات سمجھ بیٹھے ہیں کوئی بات نہیں, ہاتھ سے تسبیح کر لیں, قرآن شریف پڑھ لیں, تلاوت کر لیں. اور ذکر کا تو, ذکر کرنے والے قلبی ذکر کا تو اتنا فائدہ ہے کہ جتنا سوئے گا وہ بھی فائدہ ہے اس کے لیے, ذاکر ہے الحمدللہ, اس کا سونا بھی جو ہے وہ متوجہ کر رہا ہے اللہ کی رحمت کو. وہ تو جب سویا تو اس نے ذکر کرتے سویا, دل کی طرف دھیان کیا اس نے, اللہ اللہ کرتے سو گیا, 3 گھنٹے سویا, 4 گھنٹے سویا, جتنے گھنٹے بھی وہ سویا ہے اللہ کے فضل سے وہ ذاکر ہے. اور ذاکر ہے تو ذکر سے زیادہ کوئی چیز ایسی نہیں جو اللہ کی رحمت کو متوجہ کرے. سبحان اللہ. اور اسی طرح یہ ہے کہ گناہ بھائیو, گناہ سے بچنا چاہیے, چھوٹا گناہ ہو, بالکل آنکھوں کا نہ ہو, زبان کا گناہ ہو, ہاتھ کا گناہ ہو, کوئی خلاف سنت, ایسی سنت جو واجب ہے, جس کو اللہ نے واجب کہا ہے شرعانے کے بھی واجب ہے, اس کو ترک کرنے والا گناہ گار ہوتا ہے, وہ تو بہت ہی بڑا گناہ کبیرہ ہے انسان کے لیے. تو سب سے بڑی چیز دو عمل ہمارے ہو گئے کہ ہر وقت نیکیاں ہوں, اور نیکیوں میں سب سے افضل چیز اللہ کا ذکر ہو. اور جس نے نہیں سیکھا الحمدللہ, بہترین دن ہے یہ رمضان کے, عورت یا مرد اس ذکر کو سیکھ لے اللہ کے فضل سے, ذکر کر لے. یہ دیکھ لیں رمضان ضائع نہیں جائے گا اس کا اللہ کے فضل سے, رمضان ضائع نہیں جائے گا اس شخص کا. یہ دیکھ لیں ذاکر, اور ذاکر وہ ذکر قلبی جو ذکر قلب سے کرنے والا شخص ہے, وہ تو اتنا کمائے گا رمضان میں کہ جس کے انتہا کوئی نہیں الحمدللہ. اس کا سونا بھی اللہ کی رحمت کے متوجہ ہوگا, اس کا جاگنا بھی اس کے اللہ کی رحمت کے متوجہ ہوگا, اس کا ہر فعل چلتا پھرتا کاروبار جو کچھ بھی ہے بس دل کی طرف سے دھیان رکھنا, ذرا پلٹا پھر دل کی طرف, جیسے دل میں اللہ اللہ کہہ رہا ہے, थोड़ा इसका आदमी कोशिश शुरू कर देगा तो इंशाल्लाह हर वक्त उसकी तवज्जो जो है वो दिल की तरफ रहेगी। औरत है, खाना पका रही है, जो कुछ करिए, बच्चों को तैयार करिए, कुछ करिए, तवज्जो उसके दिल की तरफ हो। और इसमें सबसे बड़ा यह फायदा होगा कि जब दिल की तरफ इंसान कल्प मुतवज्जा करेगा तो लाजानी बातों से जान छूट जाएगी, गुनाहों से खत्म हो जाएगा। तो दो चीज है कि इस माह के अंदर गुनाह बिल्कुल ना करे आदमी, गुनाह के करीब भी ना जाए, गुनाह को इतने बड़ा इंसान बहुत बड़ी चीज समझे, क्योंकि वो उन लोगों में शुमार हो जाएगा, उन मर्दों औरतों में शुमार जो रिजेक्ट कर रहे हैं अल्लाह ताला की इस रहमत को। तो ये है काम है दोस्तों इस माह करने का कि अल्लाह पाक हमें खूब जिक्र करने की तौफीक नसीब फरमाए, और जिक्र कल्बी हो, और दूसरी चीज के गुनाह बिल्कुल ना करे आदमी, बिल्कुल ना करे। जबान, निगाह, झूठ, बातें, उससे बचने का तरीका यह है कि कम से कम कंपनी रखें इस महीने में। ये दोस्तबाजी होती है, मेल मिलाप, उठना बैठना, रिश्तेदारी, बहन भाई, सबसे कट कर दे। इंतहा यह है कि अल्लाह ताला इसको बंदे को खींचते 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 आखिरी दसवें दिन में कहता है कि तू बस इतना ही हो जा कि अब तू सब कुछ ही छोड़ दे और आखिर कोने में बैठ के तू मेरी तरफ मुतवज्जो हो ताकि तू रहमत को जाया ना करे। यह एतकाफ का मतलब है, यहां तक अल्लाह ताला इंसान को घसीट देता है। तो हमें तशू दिन से कोशिश करनी चाहिए कि सबसे इस वक्त मिलाप कम हो, लेना देना कम हो, मुलाकात कम हो, गुफ्तगु कम हो, दोस्ती कम हो। बहुत ही सख्त जरूरत है तो मसाइल को हल करें इसमें। उन्हें क्या है कि इस माह के अंदर आप कोई मसला करेंगे, इंसान है, शैतान आपसे झूठ बुलवा देगा, या गुस्सा दिला देगा, या फजूल बात करा देगा, या कोई ऐसी चीज करा देगा, तो इतना बड़ा नुकसान है, इसके नुकसान की तलाफी नहीं हो सकती। इसका एक तरीका ये भी है कि आदमी अपने जो है मामूलात कम कर दे, लोगों से मिलना जुलना, बस हंस पे जरूरत आदमी मिले, दैट्स ऑल। किसी के मामलात में इंटरफेयर ना करे, किसी की बातें ना करे, किसी के अंदर कुछ दखल ना दे। बहुत ऐसे जैसे कि बस एक दूसरे से हम पहचानते ही नहीं, सलाम दुआ तक हाँ जी ठीक है, क्योंकि दूसरी बात इंसान जबान से निकलेगी नहीं इंसान की। और नेकियों के लिए सबसे बड़ी चीज़ यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का बहुत कदम है, सुबहानअल्लाह। इतना नायाब चीज़ मैं देख रहा हूँ कि सुबह, दोपहर, शाम अल्लाह का जिक्र नसीब हो जाता है। मुझे पता है इससे बड़ी कीमती चीज मैं कहता हूँ है ही नहीं रमजान की, ये तो रूह है रमजान की। तो ये मैं आपको मजबूर नहीं कर रहा, इश्तेहाल दिला रहा हूँ, मजबूर नहीं कर रहा कि आप जिक्र है सुबह भी हैं शाम को हैं, इसमें घबराने की बात नहीं है। मैं आपको मजबूर नहीं कर रहा हूँ, मैं इश्तेहाल दिला रहा हूँ कि इतनी नायाब चीज और जिसकी जरूरत है कि जब सबसे ज्यादा अल्लाह की रहमत को खींचता है उसको फिर क्यों हम छोड़ते हैं। मुझे बताएं आप, कम से कम ये 30 दिन तो हम कहें कि एक मजलिस को भी हमने नहीं छोड़ना। और ख़ासतौर पे वो लोग, अल्हम्दुलिल्लाह आप ये देखें कि हज़ारों लोग ऐसे हैं जो बेचारे हमारे साथ शामिल नहीं हो सकते, औरतें तो वैसे ही शामिल नहीं हो सकते, चंद फासले पे रहते हैं, चंद माइल्स पे, लेकिन बेचारे हमारे साथ शामिल नहीं हो सकते। आप देखें कितने खुशकिस्मत हैं बोल्टन के लोग, अल्हम्दुलिल्लाह कि वो बड़ी खुशी के साथ आगे बैठ सकते हैं अल्लाह के जिक्र के अंदर, और शेख उनके सामने होता है। मुझे बताएं उन लोगों से पूछें जो बेचारे इस वक्त चंद फासले पे रहते हैं लेकिन वह जिक्र में नहीं आ सकते, शामिल नहीं हो रहे आपके साथ, तो फिर हिसाब किताब भी ऐसे ही होगा आखिरत में। ये याद रखना मेरी बात, अल्लाह जब अपनी नेमतों का हिसाब लेगा ना, ये नहीं लेगा कि तुझे इतने पैसे दिए थे, इतनी दौलत दी थी, इतना माल दिया था। सबसे पहले नेमत ये थी कि तुझे मैंने वो घड़ियां दी थी जिस घड़ियों का कोई मुकाबल ही नहीं था, तुमने उस घड़ियों को कैसे हासिल किया। जिक्र तेरे शहर के अंदर जिक्र जारी था, तेरी मस्जिदों में जिक्र जारी था, सुबह भी मैंने जारी कराया, शाम को भी जारी कराया, दोपहर को भी जारी कराया, तुझको मैंने जाकिर बनाया, तूने इस नेमत का क्या बदल दिया मुझे, हत्ता ये कि तुम रमजान तक में छोड़ दी। मुझे बताए क्या बरकत होगी उसकी जिंदगी के अंदर कि एक इंसान को सहूलत अल्लाह पाक दे और उस सहूलत को रिजेक्ट कर दे। किसी में नींद आ जाती है, बड़ी सुस्ती है, ये आया करेंगे बस जी, कोशिश करेंगे हम तो जी, बड़ी मेहनत करते हैं आने की कोशिश करते हैं, ये किसको कह रहे हैं आप, एक्सक्यूज किसको दे रहे हैं। अपने आप पर जुल्म कर रहे हैं, अपने आप पर जुल्म कर रहे हैं, अल्लाह ताला की इतनी अजीम नेमत को खुद जाया कर रहा है, अल्लाह के क्या जाएगा, उसको तो कोई जरूरत नहीं है हमारी दोस्तों। अब ये बैठे हैं हम, अल्लाह अंदाजा लगाए यहाँ जमा हो गए हैं, किसने किया, किसने बिठाया, तो कुछ अमल नहीं है। फिर आए जबान की, उस जबान में मालिक तरफ आए जिस जबान से हमने अल्लाह को पहचाना, जन्नत को पहचाना, दोजख को जाना, वो जबान क्या कहती है इसके बारे में? सुभान अल्लाह, वो जबान मुबारक क्या कहती है? अगर यकीन है आपको उस जबान पर, उस जबान मुबारक से पूछें कि जी क्या है, ये लोग बैठे हैं आए हैं जिक्र कर रहे हैं, आप हमें बताएं क्या हो रहा है, हमें तो कुछ पता नहीं। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं मैं देख बताता हूँ उस वक्त क्या हो रहा है, इस वक्त हो क्या रहा है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं मैं बताता हूँ। तो जिस तरह तुमने जन्नत पर यकीन किया है, अल्लाह पर यकीन किया है मेरी जबान से, तो इन बातों पर यकीन करो। मैं तुम बता रहा हूँ कि जिस वक्त लोग जमा हो जाते हैं मस्जिद के अंदर और बैठ के अल्लाह का जिक्र करते हैं, तो फरिश्तों को इतना हजूम होता है जो रहमतें लेकर आते हैं कि जमीन और आसमान भर जाता है। बताओ कहां कहां भर रहा है इस वक्त जमीन आसमान भर जाता है? दुनिया की है जगह ऐसी? इस मजमे के बारे में बताया कि अगर कोई मजमे ऐसा बैठ जाता है, किसी मस्जिद में बैठ जाए, किसी घर में बैठ जाए, उनका मकसद सिर्फ है कि मुझे याद करने के लिए वो बैठे हैं, मेरे जिक्र के लिए बैठे हैं, तो उसकी हयत अल्लाह बदल देता है। कौन बता रहा है? वही जबान मुबारक कि जिसने कहा अल्लाह एक है, अल्लाह मौजूद है, जन्नत है, मरने के बाद ये होगा, और हम सब यकीन करते हैं, तो क्या इस बात पर यकीन नहीं करेंगे? अल्लाह के नबी ने फरमाया उस जगह पे भागो, उस जगह जाओ जहां एक ऐसी जगह पर अल्लाह की रहमतों के हजूम उतरने वाले हैं जिसका अंदाजा नहीं हो सकता। क्या मेरा तेरा आना अल्लाह की रहमत नहीं कितनी बड़ी है? मुझे बताएं, ये कोई मामूली चीज है? अल्लाह का जिक्र कोई छोटी चीज है? वो शायद इसलिए समझते हैं कि इसलिए कह रहा है, ये खुद जो जिक्र करता है कराता है तो जिक्र के लिए बुला रहा है। वो अल्लाह के बंदरों बंदो, ये तो सोचो तो इंसान, मैं अपने लिए क्या बुलाऊंगा आप, मुझे क्या गरज है, मुझे क्या गरज है आप क्या आए या ना, मुझे क्या है, मुझे बताएं। मैं तो अपनी लालच में आके बैठ गया, अल्लाह के फजल से मैं तो इनाम लेके जाऊंगा, लेकिन क्या है इतना इनाम आपको बताने का और पैगाम देने का, मुझे ये सवाब तो मिलेगा ना कि ये बंदों को बुला रहा था उस जबान की, उस जबान की जो जो जिस जबान ने ये बताया है कि उस पर इतना इनाम है, उस जबान पे यकीन करते हुए उसने यकीन के सबूत दिया कि बंदों को कह रहा था बंदों आओ उस जबान पे यकीन करो जहां हम जा रहे हैं, जो फेल हम कर रहे हैं उसकी हयत तो ये बताइए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और कल हम छोड़ देते हैं, अल्लाह पूछेगा नहीं कितने पागल लोग थे कि हो भी रमजान, हो भी असर से मगरिब का वक्त, हो भी रहमतों का नजूर, और खालिस वो रहमत जो पूरा साल नहीं मिल सकती इंसान, और फिर बुलेटिन वाले, अल्लाह अंदाजा लगाए, बुलेटिन तो गली गली से लोगों को आ जाना चाहिए था कि भाई हमें इजाजत है हम आ सकते हैं, बाकी की इजाजत नहीं है। तो ऐसे लोगों पर अफसोस है, अफसोस खुदा की किस्म। बाज़ तो मुझे देखने को दिल नहीं करता ऐसे इंसान को कि देखो ये इतना रिजेक्ट कर रहा है अल्लाह ताला की रहमत का, इंसान ये इंसान है और अल्लाह से तवक्कुल करता है मेरी दुआएं कबूल हो, मेरी ये मामला सही हो, मेरी फलां चीज हो, मेरी इसलां चीज हो, और जब बांटते हैं अल्लाह ताला उस जगह से नफरत करते हैं, पहुंचता नहीं उधर, कैसे सर्वाइव कर सकता है आदमी? किसी पहचान है कोई आता है तो जी बताएं आप किस पहचान हो सकते हैं? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर कबीरा, सुभान। तो ये है दोस्तों रमजान मुबारक की एक वो चीज मौजूद है जो किसी महीने में मौजूद नहीं है, किसी महीने में मौजूद नहीं है। वो क्या है? अल्लाह की खास रहमत जो इस महीने में सिर्फ मिलती है। बस याद रखें चीज को, तो दो चीजें याद कर, हम कहने निकी करनी है हर वक्त निकी में मशहूर रहें, और दूसरी चीज इस वक्त ताल्लुकातों को अपन महदूद करना है, कम करना है, तीसरे हर वक्त अपने आप को इन्वॉल्व करना है किसके अंदर, जिक्र करनी, गुनाहों को काम नहीं करने, फजूल जी दाढ़ी काटना, फलां करना, ये करना, बताओ मुझे। तो इस महीने से ही रिजेक्ट कर दिया आप, गाने बजाने देखने, फजूल चीजें रखने, अस्तग़फिरुल्लाह। तो ये मतलब है कि इतना इतना हमने इतना बड़ा गुनाह किया कि अल्लाह को इस मामला को रिजेक्ट कर रहे हैं कि हम नहीं चाहिए तेरी रहमत, हम तो गुनाह करेंगे, गुनाह तो रिजेक्ट करते हैं। तो गुनाह कौन कह रहा है इसको, मुझे बताए किसने कहा कि दाढ़ी काटना गुनाह है? ये कोई ऐलान हुआ है गवर्नमेंट की तरफ से जो आप ना माने? मिसाल दे रहा हूं, क्योंकि ऐलान हुआ है कि भाई आप पर्दा बेपर्दा फिरे मत फिरे, ये गवर्नमेंट ऐलान किया है? नहीं, उसी जबान ने ऐलान किया जिसके बारे में आपको पता है, ये उसी जबान ने ऐलान किया, खबरदार दाढ़ी ना काटना, गुनाह है, कबीरा है, फासिक हो जाएगा तू। और जो इंसान रमजान के अंदर फासिक होकर फिरे, मुझे बताए उसको क्या इनाम क्या मिलेगा? कम अज कम इतना ही कर ले कि रमजान ही की नीयत कर ले कि मैं इस चीज को हाथ नहीं लगाऊंगा, दाढ़ी हो पूरी एक मुश्त, तौबा कर लें चीज से, अभी वक्त है, एक ही रोजा गया है, अब एक रोया रोजा जाया किया हम इस तरीके से कि हम दाढ़ी को छोटा रखते हैं या दाढ़ी को मुड़ाते हैं, तोबा कर लें इस चीज से। इसी तरह बेपर्दा औरतें जो है तोबा कर लें कि बेपर्दा हम फिरते हैं, अल्लाह हुक्म ने अपने रोजे को बर्बाद किया। कोई गुनाह इंसान से नहीं होना चाहिए, इंसान की जिंदगी में नहीं आना चाहिए बिल्कुल। एक जाया किया हमने रमजान, देखें अब बाकी रमजान को जाया ना करें, एक रोजा जाया हो गया हमारा, पूरे एक मुश्त रोजी दाढ़ी रखें इसकी नीयत करें अल्हम्दुलिल्लाह, और अपने आप को जाखिर बनाएं, जिक्र करें, शुक्र करें, दुआएं भी कबूल होंगी, मिलेंगी भी, हर चीज अल्लाह ताला अता फरमाएगा। वैसे नहीं होता, वैसे नहीं होगा। जिसने रमजान जाया कर दिया उसने सब कुछ जाया करते है क्या, उसके पास बचा ही कुछ है, रिजेक्ट। तो इंसान इस माह को बड़े एहतियात के साथ गुजारने की कोशिश करें इंशाल्लाह, और हर वक्त अपने आप को इन्वॉल्व रखें और अल्लाह के जिक्र में महव रहें, जिक्र की प्रैक्टिस खास करें। जिक्र कल भी आपने सीखा इसलिए था कि इस ऐसे मौके के अंदर अल्लाह की रहमत को मुतवज्जा करें। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक नसीब फरमाए।